नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एज्रा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में आनंदित हैं और प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से एज्रा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि इसराइली जो बंधुआई में थे छूट करके वापस अपने नगर यरूशलेम में आए और वहां आने के पश्चात उन्होंने पुनः मंदिर बनाने का कार्य आरंभ किया, परंतु कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और तब हम पाते हैं कि राजा की आज्ञा के द्वारा वे फिर से अपने कार्य को करना आरंभ किए और उन्होंने मंदिर का पुनः निर्माण किया और इतना ही नहीं उसका समर्पण भी किया। हम देखते हैं कि हगै और नहेमिया इन्होंने भी अहम रोल उस कार्य को करने में किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एज्रा की अगुवाई में स्वदेश आगमन, जो बचे हुए लोग थे उनका आगमन फिर से इसराइल के लिए होना। तो इससे पहले कि आज हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आप हमारे जीवन में प्रतिदिन देते हैं। आज इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को और एकाग्रतापन को खोल दीजिए, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते और सुनते हैं निश्चित रूप से आपके वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए, हमसे बोलने और बातचीत करने पाए। विशेष करके हमारे उन मित्रों के लिए विनती है जो निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। पिताजी, आप उनके जीवन में कार्य करें ताकि वे इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके जीवन में शांति और आनंद देना चाहते हैं। हाँ प्रभु, इस घड़ी हम सबके साथ हो, आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एज्रा की अगुवाई में स्वदेश आगमन के विषय को देखेंगे, अब हम एज्रा की इस छोटी पुस्तक के दूसरे मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं। प्रथम 6 अध्याय जरुबाबेल की अगुवाई में यहूदियों के यरूशलेम आगमन का विवरण सुनाते हैं। इस पलायन में लगभग 50,000 यहूदी बेबीलोन से रवाना हुए थे। बेबीलोन की बंधुआई में जाने का मुख्य कारण था कि यहूदी लगातार मूर्ति पूजा में लगे रहते थे, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे। क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वे मूर्ति न बनाएं और न उनको दंडवत करें। अतः परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन की बंधुआई में भेज दिया। यहूदियों ने मूसा की व्यवस्था का भी उल्लंघन किया था। उन्हें भूमि को प्रति वर्ष अर्थात प्रति 7 वर्ष में विश्राम देना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी समझ में यह नियम महत्व नहीं रखता था। वे सोचते थे कि व्यवस्था का उल्लंघन करके वे बचे रहेंगे, परंतु परमेश्वर ने कहा, मैं 70 वर्ष के लिए तुम्हें देश से बाहर कर दूंगा, जिससे कि भूमि को अपना खोया हुआ विश्राम प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रियो, जब भूमि ने 70 वर्ष विश्राम कर लिया और उसे नवजीवन प्राप्त हो गया, तब परमेश्वर उन्हें स्वदेश लौटा लाया, अर्थात उन बंधुआई में गए हुए लोगों को। बेबीलोन में वास कर रहे बंधुआ यहूदियों में एक और जागृति की लहर आई। एज्रा एक और दल को लेकर यरूशलेम में आया। एज्रा यद्यपि इस पुस्तक का लेखक है, वह इस समय तक इतिहास में प्रकट नहीं होता है। अंतिम 4 अध्यायों में हम इस पुस्तक के लेखक से भेंट करते हैं। जी हाँ, अध्याय 7 और 8 में हम पढ़ते हैं कि एज्रा कुछ और यहूदियों को लेकर लौट रहा है। अध्याय 9 और 10 में एज्रा द्वारा सुधार आंदोलन का उल्लेख है। जागृति सुधार लाई और क्रम प्रायः यही होता है। मेरे प्रियो, नहेमिया की पुस्तक में हम फिर से इसी तथ्य को देखेंगे। एज्रा बाइबिल के उपेक्षित चरित्रों में से एक है। मैं यह नहीं मान सकता कि एज्रा ने बाइबल के टीकाकारों से उचित मान प्राप्त किया है, और कलीसिया से तो कभी नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आपने एज्रा की पुस्तक से उपदेश भी नहीं सुना होगा। क्या आपने इस पुस्तक पर शिक्षा की बातें कभी किसी से सुनी है? यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे आसानी से अनदेखा किया जाता है। अगले कुछ अध्यायों में हम एज्रा से भेंट करेंगे और उससे परिचय भी प्राप्त करेंगे। तो आइए इस समय आप मेरे साथ निकालिए एज्रा की पुस्तक 7 अध्याय उसका 1 से 5 पद। एज्रा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 से 5 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशत्र के दिनों में एज्रा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सरायाह का पुत्र था, सरायाह अजरयाह का पुत्र था, अजरयाह हिल्कियाह का, हिल्किया शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहितूब का, अहितूब अमरयाह का, अमरयाह अजरयाह का, अजरयाह मरायोत का, मरायोत जरहा का, और जरहा उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबिशु का, अबिशु पिनहास का, पिनहास एलियाजर का, और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। मेरे प्रियो, शेयर्स ही वह राजा था जिसने नहेमिया को अनुमति दी थी कि यरूशलेम लौटकर उस नगर का पुनः निर्माण करे। जी हाँ, यह दानियल की 7 सप्ताहों की भविष्यवाणी का आरंभ है। नहेमिया की पुस्तक में हम इस पर विचार करेंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति मुझ में कौतूहल जगाता है वह राजा नहीं, एज्रा है। वह कौन है? एज्रा हारून के पोते पिनहास का वंशज था, अतः वह याजकों के वर्ग का था। यदि यरूशलेम में मंदिर होता तो वह याजक का कार्यभार संभाल रहा होता। जी हाँ, अति संभव है कि वह महायाजक होता, और दुर्भाग्य से मंदिर को ध्वंस कर दिया गया था। एज्रा पहले दल के साथ यरूशलेम नहीं लौटा था क्योंकि वहां उसके लिए सेवा करने का अवसर नहीं था। अतः वह बेबीलोन में ही यहूदियों के मध्य सेवा कर रहा था। अब लगभग 2000 यहूदी एज्रा के साथ यरूशलेम को लौटने की योजना बनाते हैं। अब क्योंकि मंदिर नए सिरे से बनाया जा चुका था, इसलिए एज्रा के पास वहां सेवा करने का अवसर था। प्रियो, हम देखेंगे कि वह परमेश्वर के वचन का शिक्षक भी था। जी हाँ, हारून के पोते एलियाजर के पुत्र पिनहास का यहाँ उल्लेख किया गया है। धर्मशास्त्र में उसका उल्लेख पहले उस समय आया था जब इसराइल मूर्ति पूजा में लीन था। उसके जोश और कर्मों ने इसराइल पर आने वाली महामारी को रोका था। आपको स्मरण होगा जब विलाम को रोका गया था कि वह इसराइल को श्राप न दे, तब उसने राजा को सुझाव दिया था कि वह इसराइलियों के साथ अंतर जातीय विवाह करवाए, जिससे कि उनमें सांसारिकता, दैहिक लालसाएं और शैतान प्रवेश कर जाए। गिनती की पुस्तक 25 अध्याय उसके 7 से 11 पद में लिखा है कि एक इसराइली ने किसी मिद्यानी स्त्री से विवाह किया। यहूदियों ने जब अन्य जाति से विवाह किया तब तब वे मूर्ति पूजा करने लगे और वहां पर मूर्ति पूजा आई और इसराइल पर महामारी आ पड़ी। पिनहास ने उस इसराइली और मिद्यानी स्त्री को जान से मारकर महामारी को रोका था। संपूर्ण जाति को बचाने के लिए दो जाने गंवानी पड़ी थी। उसके इस कार्य के प्रतिफल स्वरूप परमेश्वर ने पिनहास से प्रतिज्ञा की थी कि उसके वंश में याजकों का अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं एक व्यवहारिक बात कहना चाहता हूँ जिसे मैं अपनी स्थिति में इस गद्यांश का तार्किक प्रसंग समझता हूँ। आज अनेक न्यायाधीशों का सोचना है कि मृत्यु दंड पार्श्विक है, असभ्य है और उसका निराकरण किया जाना चाहिए। जी हाँ, मृत्यु दंड मूल रूप से मानव जीवन की सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यदि एक अपराधी अपने अपराधों का मृत्यु दंड नहीं पाएगा तो सैकड़ों मनुष्य को जान गंवानी पड़ती है। आज हम अपने नगरों में सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि अब मृत्यु दंड नहीं रहा। अब यह ना कहें कि मृत्यु दंड अपराध नहीं रोकते। मैंने देखा है कि जब यातायात निरीक्षक मेरा चालान करता है तब मैं धीरे से गाड़ी चलाता हूँ। अब भी आप कहेंगे कि नहीं होता है। दंड अपराध अवरोधक है और यही इसका उद्देश्य भी है, और यही कारण है कि वह मिद्यानी स्त्री और उसका यहूदी पति मारे गए थे। इस दंपति की मृत्यु के कारण असंख्य इसराइली बचाए गए उस अशुद्धता से जो समाज में प्रवेश कर गई थी। प्रियो, एक बार एक पुरुष को फांसी की सजा सुनाई गई। उस समय अपराधी की अंतिम इच्छा पूछी जाती थी, अतः उस अपराधी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप जान ले कि यह फांसी मेरे लिए एक अच्छा सबक है। मेरे मित्रों, फांसी का उद्देश्य यह नहीं था। फांसी का उद्देश्य था कि समाज में रहने वाले स्त्री, पुरुष और बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। हम आज जीवन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि एक अपराधी को जीवन दान देने के लिए अनेक जाने जा रही है। परमेश्वर की रीति यह नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य के जीवन की रक्षा करना चाहता है। वह जानता है कि मनुष्य मन कैसा बुरा है। यर्मिया की पुस्तक 17 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जी हाँ, इज़रा के पूर्वज पिनहास से सीखने को हमारे लिए एक महान शिक्षा है। तो आइए हम आगे पढ़ेंगे। इज़रा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, यही इज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। ध्यान दीजिए, इज़रा मूसा की व्यवस्था के ज्ञान में प्रवीण था, अर्थात अच्छी तरह से मूसा की व्यवस्था को जानता था। उसे मंदिर में सेवा करने का अवसर नहीं था, अतः उसने वचन के अध्ययन में समय लगाया। अब वह अपने अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को बांटेगा। यही कारण है कि उसे प्रवीण शास्त्री कहा गया है। इज़रा 7 अध्याय उसके 21 पद से प्रकट है कि बेबीलोन में इज़रा को प्रतिष्ठा प्राप्त थी। राजा की दृष्टि में भी वह परमेश्वर के वचन के ज्ञान के कारण सम्मान का पात्र था। वह परमेश्वर के वचन का शिक्षक था। हम इज़रा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, कुछ इसराइली और याजक, लेविये, गवये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थशत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। ध्यान दीजिए, बेबीलोन के यहूदियों में एक और जागृति आई और 2000 यहूदी इसराइल लौटने के लिए तैयार हुए। आगे हम पढ़ते हैं इज़रा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा हुआ है, वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। जी हाँ, उनका निर्गमन शहर के 7वें वर्ष में हुआ। उन्हें यरूशलेम पहुंचने में लगभग 5 महीने लगे, क्योंकि वे पद यात्रा कर रहे थे, जो कि एक कठिन यात्रा थी। तब हम आगे पढ़ते हैं एज्रा के पुस्तक 7:10 में, क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इसराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। ध्यान दीजिए, एज्रा संपूर्ण मन से लौटने की तैयारी कर चुका था। वह जानता था कि प्रस्थान का दिन आएगा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। अतः उसने अपना मन थाम लिया और मूसा की व्यवस्था, इसे हम बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों में पाते हैं, उसका अध्ययन किया। उस समय यहोशू की पुस्तक भी थी। अधिकांश विचारकों का मत है कि पहला और दूसरा इतिहास एज्रा ही ने लिखा है। एज्रा परमेश्वर के वचन का अध्ययन मात्र ही नहीं करता था, उस पर आचरण भी करता था। जी हाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना एक बात है और उस पर आचरण करना दूसरी बात है। एज्रा परमेश्वर का वचन सिखाना भी चाहता था और उसकी हार्दिक इच्छा यह भी थी कि परमेश्वर की प्रजा उसकी विधियों और विधानों को समझे। आगे लिखा है एज्रा के पुस्तक 7:11-13 में, जिसे हम पढ़ते हैं, जो चिट्ठी राजा अर्थशत्र ने एज्रा याजक शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इसराइलियों ने चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। एज्रा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अर्थशत्र महाधीराज की ओर से, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इसराइली और उनके याजक और लेवीय अपने इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा अर्थशत्र ने राजाज्ञा निकाली, जिसके अनुसार एज्रा और उसके अनुयायियों को स्वदेश लौटने की अनुमति प्रदान की गई थी। वह आज्ञा नहीं थी कि वे चले जाएं, अपितु अनुमति की, यदि वे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या यदि परमेश्वर चाहता है कि वे जाएं तो वे अवश्य जाएं। हम आगे पढ़ते हैं एज्रा की पुस्तक 7:14-15 में लिखा हुआ है, तू तो राजा और उसके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इसराइल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि एज्रा को दरबार में सम्मान प्राप्त था और वह परमेश्वर की गवाही का पात्र था, क्योंकि राजा और उसके मंत्रियों ने इसराइल के परमेश्वर के लिए दान दिया था। जी हाँ, एज्रा को न्यायों की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया था। उन्होंने वह सब वस्तुएं एकत्र की और एज्रा को राजा ने राजपत्र भी दिया। इसके बाद उनके प्रस्थान की तैयारी भी की गई। उस राजपत्र में परमेश्वर के लिए महान श्रद्धा अर्पित की गई थी। देखिए उसके अंत में क्या लिखा गया है। एज्रा की पुस्तक 7:26 में हम पढ़ते हैं, जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। मेरे प्रियो, यह व्यवस्था इसराइल देश में लौट आने वाले यहूदियों के लिए थी। दूसरे शब्दों में, यदि वे स्वदेश लौटते हैं तो उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना अवश्य है। अब देखें एज्रा की आभार व्यक्ति। एज्रा की पुस्तक 7:27 में हम पढ़ते हैं, धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसा मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे। अब देखिए कि मंदिर का पुनरुद्वार ही नहीं करना था, उसका सौंदर्यीकरण भी करना आवश्यक था। मेरे विचार में यही है कि परमेश्वर के भवन को अधिक से अधिक सुंदर बनाया जाना चाहिए और यह सब कुछ आराधकों की क्षमता के अनुसार हो। आगे लिखा है इज़रा की पुस्तक 7 अध्याय के 28 पद में, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई इसके अनुसार मैंने हिया बांधा और इसराइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। यहाँ पर ध्यान दे, इज़रा के साथ आने वाले यहूदी उच्च वर्ग के थे, यद्यपि वे संख्या में कम थे परंतु अधिकांश लोग अगुए थे। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 8 में इज़रा के साथ आने वाले की सूची को भी देखेंगे। देखिए, इज़रा ने सुनिश्चित किया कि उसके साथ लेवी भी जाएं, उनमें मंदिर के सेवक नवीन भी थे। मेरे प्रियो, अगले पद से प्रकट होता है कि इज़रा कैसा सामान्य मनुष्य था। आइए हम देखें इज़रा की पुस्तक 8 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अहवा नदी के तट पर इज़रा ने उपवास और प्रार्थना का आयोजन किया कि परमेश्वर की इच्छा जान पाए। तब हम आगे पढ़ते हैं इज़रा 8 उसके 22 और 23 पद में, क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़रा ने अपने साथियों को बताया कि उसने राजा के समक्ष गर्व से कहा था कि परमेश्वर उनकी यात्रा में रक्षा करेगा और उनकी सुधि लेगा तथा उन्हें सुरक्षित स्वदेश पहुंचाएगा। तब उसने उस दल पर दृष्टिपात किया जो उस लंबी और कठिन यात्रा पर निकलने वाले थे। उसने उन परिवारों को, छोटे बच्चों को देखा क्योंकि वह मार्ग में आने वाले संकटों को देख रहा था। अब मन में एक विचार आ सकता था कि राजा से कुछ सैनिकों की सहायता का निवेदन किया जाए, परंतु समस्या तो यह थी कि राजा कहेगा, मैं तो सोच रहा था कि तू परमेश्वर पर भरोसा रखकर चल रहा है। जी हाँ, हम भी कई बार परमेश्वर पर अपने भरोसे और उसकी महानता के बारे में बहुत कुछ कह देते हैं, परंतु जब वास्तव में हम उस स्थान पर होते हैं जहां हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होता है, हम उस पर भरोसा नहीं रख पाते हैं। इज़रा भी ऐसा ही था। वह पूर्ण रूप से एक साधारण मनुष्य था। उसने अंगीकार किया, मैं मार्ग में शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। जी हाँ, अब इसका विकल्प क्या है? उसने प्रार्थना और उपवास का आह्वान किया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें केवल तेरा ही आसरा है। परमेश्वर हमें ऐसी ही परिस्थिति में अनेक बार ले आता है ताकि हम उसके निकट आए और उसके द्वारा से सफलता एवं विजय को प्राप्त करें। इज़रा 8 अध्याय 31 और 32 पद में हम पढ़ते हैं, पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। ध्यान दीजिए, राजा ने इस दल के साथ बहुत सोना, चांदी और सामान भेजा था जो याचकों के पास था, अतः उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और वे सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। वे 3 दिन यरूशलेम में रुके और सब संपत्ति मंदिर में पहुंचा दी। आगे हम पढ़ते हैं इज़रा की पुस्तक 8 अध्याय उसके 33 से 35 पद में, फिर 4थे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरियाह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। उसके संग पिनहास का पुत्र एलियाजर था और उनके साथ येशु का पुत्र योजाबाद लेविये और विनोई का पुत्र नोअघा लेविये था। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गई और उनका तौल उसी समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इसराइल के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाए अर्थात समस्त इसराइल के निमित्त 12 बछड़े 96 मेढ़े और 77 मेमने और पाप बलि के लिए 12 बकरे। यह सब यहोवा के लिए होम बलि था। मेरे प्रियो, यहाँ फिर 12 बकरों का उल्लेख किया गया है। क्यों? क्योंकि वह पाप बलि थी और इसराइल के 12 गोत्रों के लिए थी। इन यहूदियों के लिए यरूशलेम में आकर परमेश्वर को बलि चढ़ाना कैसी अनहोनी और महिमामय बात थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एज्रा एक साधारण पुरुष होकर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और इतना ही नहीं, उसने जो भी वायदे अपने लोगों के बीच में किए उसे उसने पूरा किया। इतना ही नहीं, वह परमेश्वर की निकटता में आकर अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उसने प्रार्थना की और वे सुरक्षित अपने राज्य में आ गए। और उसने परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ होम बलियां भी चढ़ाई ताकि 12 गोत्र इसके द्वारा से परमेश्वर को महिमा दे सके। मेरे प्रिय मित्रों, एज्रा एक साधारण व्यक्ति था और उसने अद्भुत रीति से परमेश्वर की बातों की शिक्षा लोगों तक पहुंचाई। आज हम जो एक साधारण व्यक्ति हैं, आइए हम भी एज्रा के साथ अपने विश्वास को रखें और परमेश्वर को धन्य कहें, क्योंकि वह चाहता है कि हम भी एज्रा की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखें, उपवास करें, प्रार्थना करें और उन अनहोनी बातों को अपने जीवन में देखें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय आज समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों का लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
ये जीवन पग पग उजला है और हर पग पग में अंधेरा है। ये जीवन ज्योति बनो मे। फटकारा।